जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा मुरली से हम सब बच्चों का श्रृंगार करते हैं, लेकिन एक ऐसी आत्मा भी है जिन्हें बाबा ने मुरली का श्रृंगार करने की सेवा दी है। भाव यह है कि बाबा की मुरली को इतना सुंदर और सरल रूप में परिवर्तन करके प्रस्तुत किया जाए जो बाबा के नए नए भोले भाले बच्चे भी उसको सहजता से समझ सके और उसकी शिक्षाओं को ग्रहण कर सके। तो ऐसी सेवाओं के निमित्त बाप दादा और दादियों के दुलारे और ईश्वरीय परिवार के अति प्यारे राजू भाई जी हमारे बीच में पधारे हैं, जिनका हम एक हाथ की ताली से हार्दिक स्वागत और अभिवादन करते हैं। आपका लौकिक जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास एक छोटे गांव के आध्यात्मिक परिवार में हुआ। सन 1960 में संस्था की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के वरद हस्तों द्वारा आपके लौकिक घर में छोटी गीता पाठशाला का शुभारंभ हुआ। उस आध्यात्मिक वातावरण में आपका बचपन बीता। वहां से ही आपको योगी जीवन जीने का संकल्प आया। 1971 में आप पहली बार माउंट आबू में आए और यहाँ के दिव्य वातावरण से प्रेरित होकर 1972 से महातपोभूमि आबू में समर्पित हो गए। 1976 से आप परमात्मा महावाक्य मुरली सिंधी से हिंदी में अनुवाद करके सेवा केंद्रों पर भिजवाने की सेवाएं दे रहे हो, जिसको अभी 50 वर्ष पूरा हुआ। बाप दादा से अव्यक्त रूप में मिले हुए दिव्य बुद्धि के वरदान के प्रमाण अपनी एकाग्र और कुशल बुद्धि द्वारा निमित दादियों की प्रेरणाओं से मुरली के सार, वरदान, स्लोगन तथा विशेष पॉइंट्स हाईलाइट करने की विशेष सेवाएं आप ही देते हैं। मुख्यालय से जो स्व उन्नति हेतु मासिक पत्र पुष्प निकलता है, जिसमें विशेष अव्यक्त इशारे, परमात्मा प्रेरणाएं, दादी जी की क्लासेस आदि होती है, उन्हें आप ही प्रकाशित करते हैं। साथ ही दादी जी के पास आने वाले पत्रों के उत्तर के पत्र व्यवहार की सेवा भी आप ही संभालते हो। अव्यक्त बाप दादा जब साकार वतन में दादी हृदय मोहिनी जी के तन में पधार कर महावाक्य उच्चारण करते थे, तब उन्हें सुनते हुए उसी समय टाइप करके तत्काल विश्व के कोने कोने में भेजने की सेवा के निमित्त आप ही बने हो। आप राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक हैं। आपके निर्देशन में शाश्वत योगी खेती प्रोजेक्ट देश विदेश में बहुत फास्ट गति से फैल रहा है। वैश्विक भ्रमण करते हुए यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल, फिजी, मॉरिशियस, यूए, अफ्रीका तथा रूस आदि देशों में भी अनेक विश्व स्तरीय कार्यक्रमों में अपने भाग लिया है। निरंतर स्व अध्ययन के कारण आपकी बुद्धि ज्ञान खजानों से भरपूर है और योग में आपके गहरे अनुभव है और अपने इसी श्रेष्ठ पुरुषार्थ और सर्व की दुआओं के कारण आपकी स्थिति सदा बेफिक्र बादशाह की तरह दिखाई देती है और वाणी फरिश्ते की तरह सुनाई देती है। तो आपकी अनुभव भरी प्रेरणाओं से हम सीखेंगे कि तीव्र पुरुषार्थ के लिए हम अपने मन का टाइम टेबल कैसे सुनिश्चित करें और एक रस अवस्था बनाए। आदरणीय राजू भाई जी।
ओम शांति। आप सबने बाबा की इस तपस्या स्थली पर 3 दिन में बहुत अच्छा योग अभ्यास किया होगा। सबको अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। पांडव भवन की भट्टी अपने आप में ही भट्टी है। यहाँ आना माना एक गीत है ना, कण कण से तेरी याद आती है। जिस कोने में जाओ बाबा यहाँ बैठते थे, बाबा यहाँ मिलते थे, कुटिया में, कमरे में, शांति स्तंभ में, कहीं भी जाओ, चलते फिरते भी बाबा की शुभ भावनाओं की सकास, वहाँ की किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं। इसलिए लोगों को बहुत डिमांड रहती है, मैं मधुबन पांडव भवन की भट्टी करूं। तो सभी ने अच्छी भट्टी की, भरपूर हुए ना। सबसे अनुभव करने का साधन हमारे पास कौन सा है? कौन सा साधन है अनुभव करने के लिए? मन। मन एक कितनी चैतन्य शक्ति है आत्मा की, सबसे श्रेष्ठ शक्ति, सबसे नंबर वन शक्ति। भक्ति में इसको कहते, इसको दमन कर दो। ये बहुत चंचल है, भागता है, भटकता है, घोड़े जैसा है, इसलिए लोग उसको दबाने का प्रयास करते हैं, हठ क्रियाएं करते हैं, निर्णय संकल्प समाधि करने का अभ्यास करते हैं। और बाबा ने हम सबको बोला, बच्चे ये तो तुम्हारा वाहन है, इस वाहन से जहाँ चाहिए वहाँ पहुँच सकते हो, सिर्फ इसका कंट्रोल अपने हाथ में रखो। जिसके पास श्रीमत की लगाम है तो श्रीमत की लगाम से मन रूपी घोड़ा बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कराता है, अच्छे स्थान पर ले जाता है। सिर्फ उसकी गति और उसकी दिशा दोनों हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। कई बार वो दिशा में भ्रमित कर देता है, इधर से उधर, जो नहीं सोचना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, जिसके लिए बाबा मना करता है, वही देखने लगता है, वही सोचने लगता है, फिर उसी का चिंतन करते करते भटक जाता है। दिशा बदल जाती है तो पहुंचना है परम धाम में और पहुंच जाता है पता नहीं किस लोक में, भटक जाता है। इसलिए बाबा ने हम सबको ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं की बहुत सुंदर एक लक्ष्मण रेखा खींच के दी है, किस लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं निकलना। अगर निकल गए तो चारों तरफ माया का राज्य है, रावण घूम रहा है, कहीं न कहीं वार करेगा, परेशान करेगा। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे वर्तमान समय अपने संकल्पों का एक बजट बनाएं, अपना टाइम टेबल सेट करें। जैसे दिनचर्या के टाइम टेबल को सेट कर लेते हैं तो सवेरे से रात तक उसी अनुसार चलने वाले सफल हो जाते हैं। हमारी इस संस्था में मम्मा जी, मम्मा के बाद दीदी मनमोहिनी निमित्त बनी, मालूम है ना? दीदी की बातें जानते हो ना, सुना है ना? दीदी मनमोहिनी संस्था की मम्मा की सीट पर ही बाबा ने उनको बैठाया और बहुत एक्यूरेट हर बात में, हर दिनचर्या की एक एक मिनट मिनट उन्होंने सफल किया। तो जब मैं आया था 72 में समर्पित होने, पहले आया तो एक महीने में दीदी ने परख लिया और परखने के बाद दादी को कहा कि इससे बात करो, ये यहाँ रह सकता है क्या? फिर ड्रामा बना, रह गया, आया तो मैं देखता था दीदी की दिनचर्या बहुत एक्यूरेट थी। जितने बजे क्लास में आना, टाइम की एकदम टाइम टेबल फिक्स, एक मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता। एक दिन कोई गीत बजाने वाले होते ना, इसे जो साथ में माइक वाले, गीत वाले, अमृत वेले दीदी योग कराने गई तो उसके बाद उसने लंबा गीत बजा दिया, और लंबा गीत बजाया तो दीदी वहां से उठ के तो चली गई, लेकिन 3-4 मिनट ज्यादा टाइम गया और उनकी दिनचर्या अपसेट हो गई। टाइम पर तैयार नहीं हुई, टाइम पर क्लास में उनका लक्ष्य था टीचर के पहले मुझे जाके बैठना है, क्लास में टीचर आ गई उसके बाद जाना माना टीचर की इंसल्ट। तो दीदी की दिनचर्या थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, 3 मिनट 4 मिनट की, और उसके बाद उस माइक वाले को बुलाया, गीत वाले को, भाव तेरे कारण मेरा सारा चार्ट खराब हो गया। क्या चार्ट खराब हो गया दीदी, क्या मेरी गलती की, तूने इतना अच्छा लंबा गीत बजा दिया। अरे भाई 1 मिनट का योग होता, 2 मिनट का योग होता, तुम 10 मिनट बजाएगा तो सब बोर नहीं होंगे, मेरी दिनचर्या तुमने बिगाड़ दी, ध्यान रखो। माना दिनचर्या में इतना एक्यूरेट थी कि 1 मिनट भी कोई नीचे ऊपर ना हो, और उसके लिए उन्होंने अपनी डायरी बनाई हुई थी। डायरी में लिख लेना कि इतने बजे यहाँ जाना, इतने बजे ये करना, इतने बजे इससे मिलना, तो पूरी टाइम टेबल के अनुसार अमृत वेले से रात सोने तक उनकी दिनचर्या फिक्स थी, और इसलिए हर चीज एक्यूरेट होती, उसमें सफल होती। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही तुम अपने मन का टाइम टेबल फिक्स करो, क्योंकि इसमें बहुत सारी व्यर्थ बातें आती हैं, और अगर किसी को एक बार व्यर्थ सोचने की, व्यर्थ चिंतन करने की आदत पड़ गई ना, तो व्यर्थ ऐसा है जैसे, नाम दो, व्यर्थ ऐसा है जैसे मकड़ी की जाल। मकड़ी की जाल देखिए, मकड़ी बहुत अच्छी कारीगर है, और ऐसा सुंदर जाल बनाती है, ऐसा कारीगर जैसा, जो ज्वाला लोग होते हैं ना, वो कारीगरी करते हैं, जुलाहे बोलते ना, तो वो ऐसी जाल बनाती है और उसको देख के खुश भी होती है, लेकिन अगर उसके अंदर फंस गई ना तो प्राण जल जाते हैं उसके, वो निकल नहीं सकती उससे। बहुत समझदार मकड़ी होगी जो एक किनारे पर बैठेगी, जो अपनी लार से इतना बड़ा जाला बनाया है उसको चुपचाप धीरे धीरे समेट लेगी, खा जाएगी। बाबा कहते हैं कई आत्माओं ने ऐसी जाल बुन ली है व्यर्थ सोचने की, व्यर्थ देखने की, जहां जाएंगे उनका दृष्टिकोण ही व्यर्थ और नेगेटिव, ऐसे होता यहां, ऐसे होता है, ऐसे करते हो, उनको अच्छाई दिखाई नहीं देती। एक बहुत सुंदर हमारे जगदीश भाई थे ना, नए नए लेख लिखते थे, तो एक बार एक लेख उन्होंने लिखा कि दो चींटियों की एक बार डिबेट हो गई, चींटियां होती ना, चींटियों की डिबेट हो गई, तो चींटियां रहती थी सफेद पहाड़ पर, एक सफेद पहाड़ था नमक का और एक सफेद पहाड़ था चीनी का। तो दोनों ने डिबेट में कहा कि सफेद चीजें सब खारी होती हैं, नमकीन होती हैं, तो दूसरी जो चीनी वाली थी कहती है अरे तुम क्या बोलती है, सफेद चीजें हमेशा मीठी होती हैं, बहुत मीठी होती हैं। तो दोनों की डिबेट हो गई, तो चीनी वाले ने कहा इसको एक बार अनुभव तो कराऊं, तो उसको निमंत्रण दिया, तो मेरे पहाड़ पर आ देख कितनी मीठी होती सफेद चीजें। तो चींटी आई और उस चींटी को वो सारा दिन घुमाती रही, इधर उधर उधर दिखाया घुमाया कि भाई कुछ तो इसको स्वाद चीनी का मिल ही जाएगा। तो सब घूमते घूमते लास्ट में पूछती है सखी तेरे को कैसी पहाड़ लगा ये हमारा, कहती हमने देख लिया सब वैसा ही तो है खारा खारा, कोई मिठाई था नहीं है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, सारा टाइम इसको मैंने चीनी के पहाड़ पर घुमाया फिर भी इसके लिए कैसा क्यों ऐसा बोल रही है। तो बोलती है अच्छा तुम अपना मुंह खोल के दिखा मेरे को, वो नमक का ढेला मुंह में रखा हुआ था, नमक का ढेला मुंह में रख के फिर चीनी के पहाड़ पर घूम रही थी। तो कई ऐसे बाबा के बच्चे है ना, वो नमक का नेगेटिविटी का वो ढेला मुख में रखते हैं, और जहां जाते हैं उनको वही दिखाई देता, कितने भी अच्छे वातावरण में कितना अच्छा माहौल हो लेकिन उनको यही दिखाई देता यहां भी तो ऐसे, यहां भी ऐसे, यहां भी ऐसे लोग करते हैं। वो व्यर्थ देखने सोचने और बोलने की आदत बन गई, इसलिए उनको अच्छा ही दिखाई नहीं देती। एक बार दादी जी को कोई ने कंप्लेन किया कि मधुबन में ऐसे होता, मधुबन में भी ये होता। दादी ने बहुत प्यार से बोला इधर आ इधर आ इधर, तेरे को 90% जो अच्छा हो रहा वो दिखाई नहीं दिया, और 5-10% जो थोड़ा गलत है नेगेटिव कुछ तो होगा, इतना बड़ा संगठन है, तेरी दृष्टि कैसी है, वही दृष्टि देखने की, गलत देखने की, नेगेटिव देखने की, पहले इसका ऑपरेशन करा ले। तो व्यर्थ सोचने देखने की ऐसी आदत बन गई है जो जहां जाता है उसको अच्छाई में भी बुराई दिखाई देती है, और जिनकी अच्छाई देखने का चश्मा है वो तो जहां जाते हैं वहां बुरे में भी अच्छा निकाल लेते हैं। इसलिए अगर हम सबको व्यर्थ से बचना है, इस संकल्प को बहुत सही दिशा में ले जाना है, तो उसको देखते हुए भी नहीं देखना, व्यर्थ दिखाई दे मुझे नहीं देखना। बाबा ने मना किया है कि कलयुग है ही व्यर्थ, सब कुछ इसमें व्यर्थ है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण कैसा, हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इसलिए उस दिन बाबा ने चार बातें दी मन के टाइम टेबल के लिए, चार बातें दी, लेकिन मैंने कहा नहीं चार नहीं पांच होनी चाहिए। पहली बात है कि जो कुछ हम अच्छी ज्ञान की बातें सुनते हैं, सुन लिया एक बार, लेकिन सुनने के बाद उस पर मनन करना, चिंतन करना कि बाबा ने आज जो वरदान में कहा, आज जो व्यक्ति सारे में कहा, उसके पीछे क्या भाव है, इसका क्या रहस्य है। पहले पहले जब हम लोग मुरली सुनते हैं ना, जो शुरू शुरू में आए थे कुछ पता ही नहीं था मुरली क्या होती, तो दीदी ने हमको ये ट्रेनिंग दी कि भले तुम क्लास में नोट्स लो, लेकिन नोट्स लेकर के चिंतन नहीं करना, एक कोई पॉइंट चिंतन में ले लो और फिर नक्की लेक का राउंड लगाते हुए उस पर विचार करो। तो कई बार ऐसा था 35-40 मिनट हम नक्की लेक का राउंड लगा के आए, पता ही नहीं चला कैसे आए, और वो चिंतन चला तो पूरी एक लिस्ट जैसे वो एक बहुत टॉपिक तैयार हो, और फिर एक छोटी डायरी में वो लिख लिया, अपना चिंतन अपना हो गया। और अगर कोई सकारात्मक चिंतन करने की एक आदत डाल ले, कई प्रकार की व्यर्थ बातों से वो छूट जाता है, लेकिन आदत पड़नी चाहिए। और वो आदत डालने के लिए ही बाबा ने इतना सारा होमवर्क दिया, नहीं तो मुरली तो सीधी थी ओम शांति से नमस्ते तक। हमारी दादी को बहुत संकल्प चलते थे, हमारे सेंटर्स बढ़ रहे हैं, नए नए स्टूडेंट हैं, पूरा एक घंटा भी क्लास में नहीं आते, कोई 5 मिनट 10 मिनट में कहते फोन पर दीदी बता दो, आएंगे क्लास में 5 मिनट में पढ़ करके चले जाएं, क्या पढ़ें, तो तुम उसका साल लिखो, रोज मुझे ट्रेनिंग देती है साल लिखो, प्रश्न उत्तर लिखो, फिर धारणा साल लिखो, फिर वरदान लिखो, फिर स्लोगन लिखो, अभी अव्यक्ति सारे भी एड हो गए। कितना सकारात्मक चिंतन का एक अच्छा भोजन हम सबको सवेरे सवेरे पौष्टिक खुराक बाबा से मिलती है, लेकिन पौष्टिक खुराक खाते हुए भी अगर कोई बीमार हो तो उसका कारण, मान लो आपको बहुत अच्छा माजून की चीजें खिलाई जाए और फिर भी आपको कुछ न कुछ तकलीफ हो, हवा पानी सूट न करे, आपकी इम्यूनिटी पावर इतनी अच्छी शक्तिशाली ना हो, बार बार कोई बीमारी आ जाए, तो क्या कहते हैं माँ बाप, तो यही कहेंगे ना इसकी शायद तकदीर ऐसी है, मैंने तो इतनी अच्छी पालना की इसको, इतना अच्छा खिलाया पिलाया, अच्छा संग दिया, अच्छा वातावरण दिया, लेकिन फिर भी ये कमजोर का कमजोर। और कमजोरी का मूल कारण खुराक जो खा रहा है उसको पचा नहीं पा रहा है, उसकी पाचन शक्ति ठीक नहीं है, और पचाने का साधन है उसका चबाना, उगाड़ना। बिना उगारे हुए बिना चबाए हुए अगर कोई चीज खा लोगे तो पचेगी नहीं, वो नुकसान कर देगी, शरीर को बीमार कर देगी स्थूल में। लेकिन सूक्ष्म में भी जो इतना पौष्टिक बाबा भोजन दे रहा है, जो बाबा के बच्चे उस पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनका मन बहुत सशक्त हो जाता, शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि सकारात्मक चिंतन मन के लिए एक बहुत सुंदर उड़ने का साधन बन जाता, जिधर ले जाना चाहो ले जा, आपके नियंत्रण में आ जाता। अच्छा भोजन, मन को अच्छे विचारों का भोजन। इसलिए सबसे पहले मन को कितना समय हम सकारात्मक चिंतन में रखते हैं, टाइम टेबल बनाओ, कम से कम मुरली सुनी, 1 घंटा तो मुरली सुनी, क्लास में आए, उसके बाद 2 बातें 3 बातें। उस दिन अभिक बाबा की मुरली में था, सारी मुरली याद नहीं रहती है, कोई बात नहीं, वरदान याद रहता, स्लोगन याद रहता, कोई 1-2 बातें तो याद रखो और उस पर मनन करो, चिंतन करो। मनन करते करते आपका मन भटकने से छूट जाएगा। ये इसका बजट बना लो, अच्छे चिंतन में रहना। आज बाबा की मुरली में ये था, अभ्यास करेंगे ना, कोई को सुनाया, फोन किया, आज बाबा ने बहुत अच्छी एक बात कही। नान बीके को नहीं सुना, बीके से बात कर सकते ना कभी, आज बाबा की मुरली में ये बहुत अच्छा था, आज बाबा की। तो वो जैसे वर्णन हो गया, तो बाबा ने कहा पहले मनन करो, फिर उसका वर्णन करो, कहीं ना कहीं सुनाओ। और तीसरा है मिलन, मिलन माना रूह ध्यान। बाबा ने हम सबको कितनी श्रेष्ठ जीवन दी है, जीवन दाता को कम से कम शुक्रिया करो, किस कीचड़ से निकाला, कहाँ पढ़े थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या हमारी प्रैक्टिकल जीवन थी। बाबा ने एकदम एक, जैसे कोई को कहते ना किचड़े के डब्बे से निकाला जाए, उसको साफ स्वच्छ किया जाए, उसको बहुत अच्छी तरह पालना दी जाए, तो कलयुग के वेस्टेज के किचड़े से बाबा ने हम सबको निकाल करके इतना स्वच्छ बनाया, इतने पवित्र बनाया, इतनी अच्छी पालना दी, इतनी अच्छी पढ़ाई दी। तो शुक्रिया करते हो, करते हो शुक्रिया कि नहीं? कभी लगता है, एक व्यक्ति मुझे मिला, मैं एक जगह गया था, वो मेरी गाड़ी चला रहा था, कहता भाई जी एक अनुभव सुनाऊं ना? सुनाओ भाई। कहता भाई जी जब ध्यान में नहीं था तो मैं रावण का बाप था। तो मैं देखने लगा, हमने कहा क्या बोलता है, रावण का बाप था। कहता रावण के ऐब क्या होंगे, उससे कई गुना ज्यादा मेरे पास ऐब थे, सारे सारी बुराइयां भरी हुई थी। मैं इतनी तो पीता था जो कब किस नाले में पड़ जाता पता नहीं, कुत्ते मेरा मुंह चाटते थे, खुद बताता है। और उसके बाद मैं इतना क्रोधी बन गया, जो मैं अगर घर से बाहर निकलूं तो सब अपने दरवाजे बंद कर लें, कोई बच्चे बाहर नहीं आए, सब माताएं अपने बच्चों को छिपा दें, क्यों किसी की पिटाई मैं कर दूं। तो सारा पूरा मोहल्ला जो था मेरे नाम से डरने लगा, वो आएगा तो बंद करो दरवाजा, उसको देखना नहीं। इतना लोग मेरे से घृणा करने लगे। मेरी ज्वेलरी की दुकान मात पिता की थी, वो सारा मैंने पी करके खा के खत्म कर दिया, एकदम कंगाली स्थिति पर आया। लेकिन एकदम खूब पिया हुआ एक दिन ब्रह्मा कुमारी का बोर्ड देखा, मैंने ऐसे दरवाजे पर पांव रखा और बहन जो अंदर थी सेंटर में, वो कहती है भैया आओ आओ। उसने ये नहीं कहा पिया हुआ इसको भगा दो, उसने बहुत प्यार से मुझे एक सोफे पर बिठाया, पानी पिलाया, प्रसाद खिलाया, कहती भाई इतना नहीं पिया कर, शांति से समझाया और कहा कल आना ना, पीना नहीं, कल आना मेरे पास, मैं कोर्स कराऊंगी। कहती वो दिन वो घड़ी बाबा की, मेरा जीवन बदल गया और बस रोने लगा बोलते बोलते, कि वो दरवाजे पर जाना माना मेरा परिवर्तन हो गया। तो उसके दिल से बाबा बहने ज्ञान क्या शुक्रिया निकलता। उसके बाद कहता मेरा इतना जीवन बदला जो सारा घर मेरा ज्ञान में आ गया, परिवार। कहते ऐसी कौन सी ब्रह्मा कुमारियों के पास जादू है जो इसका जीवन ही बदल दिया, जिसको कोई नहीं बदल सकता। तो बाबा ने ऐसे कई परिवार जो इतना पीने वाले खाने वाले क्रोधी कई प्रकार के व्यसन बुराइयां विकार भरे हुए थे, और उनको अपना बनाया और प्यार दे करके पालना दे करके क्या से क्या बना दिया। हम लोग कहाँ गाँव के छोरे हैं, कहाँ पड़े होते, कैसे बाबा ने अपनी गोद में बिठाया, पूरे विश्व के आगे लाया। तो अंदर से दिल से शुक्रिया करना, बाबा के गुणगान करना, वाह बाबा वाह क्या मेरा भाग्य है जो आज इस कलयुग के अंदर कितना लोग भटके हुए हैं चारों तरफ से, कोई भक्ति के धक्के खा रहे हैं, कोई गुरुओं के पीछे भटक रहे हैं, कोई तीर्थों पर भटक रहे हैं, कोई व्यसनों के पीछे सब समय बर्बाद कर रहे हैं, और बाबा ने हम सबको भटकने से बचा दिया। तो करे दिल से शुक्रिया निकलती बाबा के प्रति, वाह बाबा वाह क्या बना दिया, संगम पर ही फरिश्ता बनाया, भविष्य में देवता बने वो तो बाद की बात है, वो तो बाद की बात है, संगम पर कौन से देवता से कम है। वो रॉयल्टी, वो पर्सनैलिटी, बोलने में, चलने में, खाने में, पीने में, किसी की चीज पर नजर नहीं जाती, इसके पास क्या है, उसके पास क्या है, तेरे पास जितना उससे ज्यादा मेरे पास, भरपूर कर दिया। अगर अपनी विशेषताओं को अपनी प्राप्तियों को संगम युग के अलौकिक पालना को याद करो तो ये बहुत बड़ा सुखद अनुभव है। बाबा कहते ब्राह्मण बच्चों को अगर संगम पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हुआ तो कब करोगे, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। तो अपने आप से पूछना क्या सचमुच मैंने इंद्रिय सुख पाया है या इंद्रिय सुख के ऊपर अतीन्द्रिय सुख पा लिया। अति इंद्रिय सुख माना इंद्रियों से परे वाला सुख, और वो सुख है आत्मिक सुख। जितना हम आत्मअभिमानी स्थिति में स्थित रहते हैं, मैं आत्मा हूं, ये आत्माएं पाठ बजा रही हैं, मैं इस शरीर से अलग हूं, आत्म अभिमानी स्थिति और परमात्मा के साथ संबंध जो जब कनेक्शन जुटेगा उस आनंद का, उस सुख का अनुभव होने लगेगा। तो ब्राह्मण जीवन में अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हम सबको होती है, और उस सुख में रहने वाली आत्माएं बाबा का दिल ही दिल में शुक्रिया करती हैं। जिसको बाबा ने कहा बच्चे मन को मिलन में बिजी रखो, यह है मिलन। केवल ऐसे नहीं मैं निराकार ज्योति बिंदु के साथ मिल रही हूं, उसमें क्या सुख मिलेगा, लेकिन बहुत प्यार से मेरा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, जो आज तूने कहां से कहां हमके बिठाया है, अपनी गोद में बिठाया, इतना लायक बनाया, सारे विश्व का इतिहास, भूगोल, जो दुनिया में पढ़ाया जाता उसका सारा सार, वेदों का, शास्त्रों का, सब कुछ बाबा ने हमें सिखा दिया। किसी भी स्टेज पर चला जाऊं कभी भय नहीं लगता है, मैं इनको क्या बोलूंगा, क्या सुनाऊंगा, अरे बाबा ने सब कुछ सुना दिया। और जब सुनाओ तो ऐसा सोचो किसी को कुछ पता नहीं जो मैं सुना रहा हूं। भगवान ने हमें पढ़ाया है, कोई इंसान ने नहीं पढ़ाया है। कोई हमसे पूछते आप कितना पढ़े हो, मैं हम पढ़े नहीं भाई, हम तो कॉलेज गए नहीं, हमको भगवान पढ़ा रहा, अभी तक भी 50-55 साल से पढ़ी तो रहा हूं, पढ़ाई पूरी हो गई क्या हमारी। स्वयं शिक्षक, सुप्रीम शिक्षक परमात्मा हमारा टीचर है और वो पढ़ा रहा है, और जब तक हमने पढ़ाई की डिग्री प्राप्त नहीं की है तब तक हमारी पढ़ाई पूरी नहीं होगी। जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। और पढ़ाई की डिग्री क्या है, कौन सी डिग्री लेना है बोलो, आरती बोलो, लक्ष्मीनारायण बनेगी, डिग्री बताओ, डिग्री हमारी डिग्री है सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। ये है हम सबके इस आध्यात्मिक पढ़ाई की डिग्री, और ये डिग्री लेने के लिए ही हम सब रेस कर रहे हैं। अगर ये इसमें कमी है, माना अभी तक हमने पढ़ाई को समझा नहीं है, पढ़ाने वाला हमको ऐसा सर्व गुणों से संपन्न बनाने के लिए आया है, सर्व कलाएं भर रहा है, एक कला नहीं सर्व कलाएं, सिर्फ 16 कलाएं नहीं, 16 कला तो चंद्रमा से भेंट की गई, भाई एक ही चंद्रमा है जिसकी कलाएं कम ज्यादा होती हैं, और उसके कारण रोशनी कम और ज्यादा होती है, लेकिन मनुष्य आत्माओं की परफेक्ट स्टेज, संपूर्णता की स्टेज को 16 कलाएं कहा है। वो पवित्रता की इतनी संपूर्ण स्टेज है जो आत्मा बिल्कुल प्योर, शरीर प्योर, आत्मा प्योर, सतो प्रधान, उस सतयुग की फर्स्ट प्रिंस की आत्मा श्री कृष्ण की सर्व कलाओं से संपन्न है। लेकिन जब वो शरीर के साथ पार्ट बजाने लगती है तो संग का रंग धीरे धीरे लगता है। शरीर के संग में आई, जन्म लिया, शरीर छोड़ा, फिर जन्म लिया, तो पुनर्जन्म लेते लेते सतयुग के अंदर तो बहुत धीमी गति से हमारी कलाओं में गिरावट आई। त्रेता युग तक केवल 2 कलाएं कम हुई, 16 कला से 14 में आ गए, लेकिन त्रेता के बाद द्वापर युग शुरू हुआ तो 8 कलाएं कम हो गई, हाफ हो गए एकदम। इतना बॉडी कॉन्शियस हावी होता गया, सतयुग में 2 बच्चे हो रहे थे, त्रेता में 3 हो गए, और द्वापर युग शुरू हुआ फुल देह मान में आया, योग बल भोग बल में चेंज हो गया। कभी विचार किया इतना बड़ा भूकंप क्यों आया? द्वापर में सतयुग के देवताओं ने, त्रेता के देवताओं ने कौन सी ऐसी गलती की जो उनको सब कुछ लुटाना पड़ा? वाम मार्ग में उल्टे रास्ते पर गए, बाएं रास्ते पर चले, उल्टे रास्ते पर वाम मार्ग, और ज्यो वाम मार्ग में आए विकारी बने, पतित बने, पूरी धरती हिल गई, सारे सोने चांदी के महल धस गए जाके समुद्र में, पतन हो गया, और पूरी सृष्टि की क्रियाकलाप बदल गई। जो आधा कल्प वसंत ऋतु थी, सीधी दृष्टि घूम रही थी, वो फिर से भूकंप में टेढ़ी हुई 23.5 डिग्री पर आ गई, मौसम बदलने लगे, और सतो प्रधान आत्माएं द्वापर युग में रजो तक आ गई। अभी तो तमो प्रधानता हो गई, सब कलाएं खत्म हो गई, इतनी गिरावट। और ऐसे समय में बाबा अपने बच्चों को पढ़ा करके ज्ञान योग से उसका श्रृंगार करके फिर से उन सब कलाओं को भर रहा है। कितनी मेहनत बाबा को करनी पड़ रही है, बिल्कुल कलाहीन को सर्व कलाओं से संपन्न बना देना, तो बाबा की शुक्रिया शुक्रिया। यह है बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान, और एकांत में जब मिले समय, बाबा आपने क्या से क्या बना दिया, कहाँ पड़ा था, किस कीचड़ में था, और आपने इतना स्वच्छ साफ बना करके त्रिकालदर्शी बनाया, त्रिनेत्री बनाया, त्रिलोकीनाथ बनाया, सुदर्शन चक्रधारी बनाया, नॉलेजफुल बनाया, सब बातों में फुल कर दिया, और ऐसा फुल बनाया कहीं पर भी चले जाओ कभी भी नहीं लगता है कोई कमी है हमारे पास। एक बार हम विदेश गए तो पहले यहाँ की वीजा लेने की बात जब आई तो कहते हैं आपको वीजा नहीं मिलेगा, कुमारों को नहीं देते हैं, एक तो बैंक बैलेंस चाहिए, दूसरा शादीशुदा तो वापस आएगा, और हम तो दोनों में बखा ली। तो मैं जब गया वीजा लेने तो मेरे को पहले लोगों ने डरवा दिया, अमेरिका वाला तो नहीं मिलेगा। तो मैं जब गया तो दो प्रश्न ही थे उसके, पहले बोला आप बैचलर हैं, तो मैंने कहा बैचलर नहीं हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। पहला उत्तर उसको मुझा दिया मैंने, ना बैचलर कहूंगा तो कहेगा फिर तो आप वापस ही नहीं आएगा, वहीं रह जाओगे। हमने कहा हम तो ब्रह्मचारी लोग हैं। फिर कहती है आपका बैंक बैलेंस कितना है, तो मैं तो अपना ब्रह्मा कुमारी का बैंक बैलेंस ले गया था। हमने कहा ये बैंक बैलेंस है, वो तो करोड़ों में था। वो देख के कहती है ब्रह्मा कुमारी, हमने कहा उसी के तो मैनेजर हैं हम लोग, उसी के तो धन को हम चला रहे हैं सब। 10 साल का वीजा एक सेकंड में दे दिया चुपचाप। हमने कहा देखो बाबा को भेजना होता तो निश्चय और निश्चिंत स्थिति, कोई डर नहीं था। हमने उसके पास हम लेने थोड़ी जा रहे हैं, हम तो देने जा रहे हैं, हम तो दाता के बच्चे हैं, हमको उनसे क्या लेना, वो हमको क्या देंगे, हम तो शांति दूत हैं, शांति दूत जाएंगे, शांति का प्रचार करके आएंगे, उनको दे के आएंगे। तो बाबा ने हम सबको इतना दिया है, माला माल बनाया है, अपने सम्मान में तो रहो, ज्ञान धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन, चरित्र का धन, ऐसा धनवान हमारे जैसा कोई दुनिया में हो ही नहीं सकते। 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपये के पीछे हम थोड़ी भटकने वाले हैं। अरे धन दिए धन ना खुटे, तुम अगर ज्ञान धन दान करो तो वो धन अपने आप पीछे पीछे आएगा, लेकिन उसके पीछे भटकोगे तो ये धन घूम खत्म हो जाएगा। बाबा ने कभी भी स्थूल धन के पीछे बहन भाइयों को कभी भी नहीं कहा, यहां तक कह दिया मर जाना लेकिन हाथ नहीं फैलाना, मांगने से मरना भला, कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिया। और ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हुई थी जो दोपहर को 400 लोग क्या खाएंगे, कुछ नहीं है घर में, आप समझ सकते हो, कोई माँ बाप को 2-4 बच्चे हों उसको कितनी चिंता होगी क्या खाएंगे, कोई मदद नहीं, कोई सहयोग नहीं, और ब्रह्मा बाबा बेफिक्र वासा, साकार में तो वही था, और शिव बाबा तो नाटक कर रहा था ऊपर से, देख रहा था बच्चे क्या करते हैं। बहुत नशा था, निश्चय था बाबा को, शिव बाबा को इन्होंने जीवन दी है, जिन्होंने ब्रह्मा को देखा हो तो सब भटक जाएंगे, और जिन्होंने शिव बाबा को देखा है वो कहीं नहीं जाएंगे, मरेंगे मिटेंगे तेरे घर पर रहेंगे, दर पर रहेंगे। एक बार सब बीमार पड़े, यहां ठंडी बहुत थी, न गर्म कपड़े, न डॉक्टर, न दवाई, और न पैसा, कुछ नहीं। बाबा शिव बाबा ने बोला शिव बाबा से पूछो दवाई क्या चाहिए इनको देना। संदेशी गई, कहते बाबा ने कहा है इन बच्चों को 15 दिन तक केवल छाछ पिलाओ और डोडा खिलाओ। अब जितने कच्चे थे, शिव बाबा कैसे कहेगा छाछ पियो, इतनी ठंडी लग रही है मुझे, सर्दी जुकाम है, और वहां से डायरेक्शन आ रहा ऊपर से संदेश कि इनको छाछ पिला दो। डर गई कहे तो भागे, और जो पक्के थे कुछ भी हो मरेंगे जिएंगे तेरे दर पर रहेंगे, उन्होंने 15 दिन तक वही छाछ पी और डोडा बाजरी का खाया और सब तंदुरुस्त हो गए, सबकी बीमारी भाग गई। पेपर लेने में बाबा कम नहीं था, बहुत पेपर लिए। एक दिन अचानक मुरली चलाते चलाते कहते हैं, कल बच्चे होली का त्योहार है ना, जलेबी का भोग लगे, जलेबी बच्चों को खिलानी चाहिए। अब बाबा तो बोल के मुरली चला के चला गया, जलेबी खिलानी चाहिए। अब भंडारे वाली दौड़ के आई, बाबा यहाँ तो रोटी के लिए आटा नहीं है, यहाँ बेसन नहीं है, यहाँ मैदा नहीं है, चाव अपने पास चीनी नहीं है, तेल नहीं है, और बाबा कहता है जलेबी खिलाए। अरे बच्ची मैंने नहीं कहा। अब बाबा किसक गया, ब्रह्मा बाबा, मैंने नहीं कहा, वो बोल के चला गया मेरे से। अब वो बोल के चला गया तो खिलाएगा ना भाई, उसने बोला है तो कहा, अच्छा उसने बोला तो एक काम करते हैं, आज सब बच्चे 2 बजे उठ करके योग करेंगे। 2 बजे बिठा दिया योग में सबको, और ज्यो 2 बजे लाइट, लाल लाइट हुई, सामने एक सिंधी रहता था, एंटी था, उसकी युगल आती थी छिप छिप करके क्लास में, उसकी नींद फिटी, और अपनी युगल को उठा के कहता है, देख तेरे बाबा को आज क्या हो गया, त्योहार पर भी बच्चियों को सोने नहीं देता, योग करा रहा है, और मुझे कहता है तेरे पास कितना है, दे जा भेज दो, देख अलमारी में कुछ रखा है क्या, कहती सवेरे देखूंगे, भी सोने दो। अरे सवेरे तक मेरी बुद्धि बदल जाएगी, तुम देख अभी भंडारी वहां कितना रखा है अंदर, अभी ले जा दिया जा करके, नहीं तो सोने नहीं देगा मेरे को। अब रात को ही उसने देखा जितना पैसा उसके अलमारी में था, समेटा थैली में लिया, और जब आई तो दादियों पहरा देती थी, एक दादी, तुम रात को क्यों आई, तेरा पति मारेगा, तेरे लिए योग नहीं है। अरे योग नहीं है, वो तो पति को नींद नहीं आ रही, पैसा भेजा, ये ले लो आप। और सवेरे सवेरे बिल्कुल फिट टाइम पर सब चीजें आई और जलेबी का भोग लगा। तो बाबा तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन निश्चय की विजय है। अगर जरा भी संशय है तो जाओ, दुनिया पड़ी है भाई, कौन खिलाएगा, क्या होगा, कौन मदद करेगा, कई हैं समर्पित भी हो गई हैं, लेकिन उनको ये निश्चय नहीं है कि हमने जीवन किसको दी है, किसी देहधारी को दी है क्या। जब बाबा को दिए तो बाबा हमारा रक्षक है, रखवाला है, किसी को भी टच करता है। अरे जिस दिन 1 रुपया भी नहीं था भंडारी में, उस दिन बाबा ने 9 बजे 8 बजे जब मुरली पूरी हुई तो बहने आई भंडारे वाली, बाबा दोपहर को क्या बनेगा, बच्चे कोई चिंता नहीं करो 10 बजे पोस्ट देखेंगे क्या आता है, सवेरे चलो सबको पहाड़ी पर घुमा के ले आते, और यही बरसात के दिन थे, जामुन थी, करौंदा था, चलो बच्चे खूब खाओ, जितना खाना तुम्हारा ही तो जंगल है, नाश्ता करवा दिया, खूब खिलाया, और फिर आया, अच्छा बच्चे 1 घंटा रेस्ट कर लो, और पोस्ट में पहली बार 500 रुपया खुले आए थे, 500 रुपया आए, और बाबा ने कहा जाओ बच्ची सब राशन ले आओ, उसमें 500 बहुत होता था। पूरे टाइम पर बेल बजी, सबको भोजन मिला। ऐसा बाबा जादूगर है, उसका यज्ञ है, उसके बच्चे हैं, लेकिन वो परीक्षा लेने का कारण था। अगर बाबा वो परीक्षा नहीं लेते ना तो सेवाएं नहीं होती, कोई नहीं निकलता घर से, और बाबा कहता तुम्हें विश्व कल्याण करना है तो घर में बैठ के करोगे क्या, बाहर निकलना पड़ेगा। तो बाबा ने उनको इतना बल भरा, इतना शक्ति दी, परीक्षाएं ली, लेकिन साथ दिया, और उन परीक्षाओं से नया रास्ता निकल गया, आज इतनी सेवाएं बढ़ी, विस्तार हुआ, और जो भागे थे ना उसमें भी कल्याण था। अगर नहीं भागे होते ना तो विदेश में इतने सेंटर्स नहीं खुलते। एक बार मेरे को दादी ने कहा तुम जाएगा अफ्रीका, जिस अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में बहुत कालों का राज्य है, और अगर पैसा है तो ठीक, लिफाफा उसको दो, और नहीं तो रोकेंगे और आपको छोरा मारेंगे। उस देश में मेरे को भेज दिया, कहती जाओ वहां पर सिंधी लोग बहुत हैं, और कहते माउंट आबू से कोई आए। मैं चला गया नाइजीरिया, जब मैं गया तो मेरे को वहां बोल दिया था कि यहाँ 24 घंटे लाइट नहीं रहती, 24 घंटे लाइट नहीं रहती, इतने गर्म देश में दादी ने मेरे को भेजा, गर्मी में कैसे रहूंगा मैं। और सचमुच जब मैं एरोड्रम पर उतरा, अकेला ही था, तो पट्टे पर लाइट नहीं थी, पट्टे पर सामान रखा था, हाथ से उठा के ले जाओ, पट्टा चले नहीं रहा था, लाइट नहीं थी। जब मैं बाहर निकला तो मुझे रिसीव करने के 2-3 आए थे सिंधी, तो ले गए सेंटर पर। सेंटर बड़ा आलीशान बना हुआ था और वहां तो 24 घंटे लाइट थी। देखा, हमको बोला गया वहां 24 घंटे लाइट नहीं और यहां तो 1 मिनट भी लाइट नहीं जाती। बोलिए देखो आप, उस समय के सिंधी बच्चे, 2 बहनें निकली यहां से यज्ञ की, और उन्होंने इतने बड़े बड़े घर बनाए, पहले बाबा को उन्होंने दिया, और 2 जनरेटर लगाए हैं, 12 घंटा एक का, जितना डीजल खर्चा होता वो देखते हैं, सेंटर को कुछ पता नहीं है। भले वो पवित्र नहीं रहे, माया ने खाया, लेकिन उनका इतना बाबा से प्यार, इतना यज्ञ से प्यार, सब सेंटर्स उन्होंने जा करके खोलना शुरू कर दिया। जब देखा बहनें बाहर निकली हैं, विदेश की तरफ आई हैं, तो हांगकांग में, लंदन में, जहां भी सेंटर्स खुले हैं, वो बाबा के, वो बच्चे जो यहाँ से बेगरी पार्ट में गए थे, भले कैसे भी गए, लेकिन उन्होंने सेंटर्स खुलवा दिए और उन्होंने उसकी संभाल की। फिर मेरे को कहें, चलो आज बाबा के आपको फैक्ट्री में ले चलते हैं, इसकी फैक्ट्री, प्लास्टिक के सब बर्तन बन रहे हैं, स्टील के सब बर्तन बने, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, और सब जगह बाबा सर्वव्यापी, कहीं शिव बाबा का सिंबल लगा है, कहीं ब्रह्मा बाबा का लगा है, टोटल सारी फैक्ट्रियां सिंधियों की, और काम करने वाले काले लोग 12 घंटा कर रहे हैं। अब मेरे को सब घुमाया, 3-4 दिन घुमाते रहे, अपनी अपनी फैक्ट्री में ले जाए, वहां जो काम करने वाले उनसे मिलाए, फिर लास्ट में मैंने कहा सब सिंधियों को बुलाओ, जितने सिंधी थे 40-50 होंगे, संपर्क थे, जानकी दादी को सब बहुत मानते थे, फिर उनको बुलाया और बिठाया। हमने कहा दादा ही बोलते हैं सिंधी लोगों, दादा आप लोग बहुत सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छा, महिमा क्या थोड़ी। कहते हैं दादी जानकी मेरा कान पकड़ती है ऐसे, और वो जो कहती है मेरे करना ही पड़ता है, वो मेरे को सोने भी नहीं देती चैन से, वो सपन में भी आकर के मेरे को कहती है करना है। इतना दादियों ने इन लोगों की पालना की, आए हैं भले कैसे भी हैं, लेकिन उनको ब्रह्मा भोजन खिलाना, उनको सौगाते देना, उनका सब कुछ सफल कराया, और उनका रग जुड़ाई बाबा के साथ। तो कई कारण बने, ऐसे बाबा ने अपने बच्चों को कहां से कहां पहुंचाया है, इतना धन दिया है, इतना माला माल बनाया है। इसलिए बाबा कहता है जिसके पास ज्ञान का धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, वो बहुत माला माल। तो इस नशे में रहो, ये बहुत अच्छा ऊंचा सम्मान है। मन को इसमें बिजी करो, बाबा पाना था सो पा लिया, केवल ब्रह्मा बाबा का गीत ये थोड़ी है, ये ब्रह्मा बाबा का ही गीत नहीं है, हम सब ब्राह्मणों का गीत है। बाबा पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। और ब्रह्मा बाबा ने कहा आई तार अलफ की हुआ रेल का राही, 1 सेकेंड में उन्होंने सोने हीरे जवाहरात की दुकान को ठुकरा दिया, ये पत्थर है, मुझे बिजनेस नहीं करना, मुझे जिसको ढूंढा था पाना था वो मिल गया, वो निश्चय था, वो नशा था, और उससे स्थापना हुई है, वो बीज पड़ा हुआ यज्ञ में। अभी छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं है, मूझना नहीं है, जो कुछ बाबा ने दिया है उसका चिंतन करो, सुमिरन करो, बाबा के गुणगान करो, ये जीवन बहुत महान है। तो पहला मिलन, पहला मनन, दूसरा मिलन, तीसरा वर्णन, और चौथा लगन। जितना प्यार बाबा से बढ़ता जाएगा, लगन माना, कल मम्मा याद कर रही थी कि वो मेरी बच्ची कौन, मीरा को याद किया, ऐसी मीरा जिसको भी बाबा ने कितना साक्षात्कार कराया, श्री कृष्ण के रूप में उनके साथ बहलाया, उनको रखा। हम सब उस लगन को देखें कि मेरो तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। कितनी बाधाएं आई हैं आज ब्रह्मा कुमारियों के आगे, क्या बाधाएं हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उसमें उलझ रहे हैं, मूंझ रहे हैं। मीरा जैसा तो कोई के आगे नहीं आया होगा, इतनी रॉयल फैमिली, इतना ऊंचा घराना, कहां शादी हुई राणा से, और उसके बाद भी मेरो तो एक गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। कुछ भी किया, मारने के लिए सांप की टोकरी भेज दी, सांप से डसा दो, विष का प्याला पी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसकी लगन बहुत तीव्र थी। इसलिए भगवान को भी उसकी रक्षा करनी पड़ी। हम सब उसके डायरेक्ट बच्चे हो, तो इनडायरेक्ट भक्तिन थे, हम तो ज्ञानी तो आत्माएं हैं। इसलिए लगन को कम नहीं होने देना, जहां लगन कम हो गई वहां विघ्नों की बौछार हो जाएगी, और जहां लगन तीव्र है वहां विघ्न ठहर ही नहीं सकता। तो लगन को बढ़ाओ, और लगन बढ़ाते बढ़ाते बाबा के प्यार में मगन हो जाओ, खो जाओ। ये मन का टाइम टेबल बहुत लंबा विस्तार है, लेकिन मैं पांच बातों में, मनन, मिलन, वर्णन, लगन और मगन, ये अगर इतनी पांच बातों में मन को बार बार बिजी कर देंगे, और इसके साथ साथ मैं 500 मान भी दे देता हूं, मनन, मिलन, वर्णन, लगन और मगन, 500 मान और याद करना, 500 रूप, मेरे पास 5-7 मिनट है केवल, 500 मान। आंख खुलते ही पहला समान है, मैं मस्तक मणि हूं, इस मस्तक में विराजमान मैं चमकती हुई मणि हूं। अपने मणि को देखो, बाबा की मणि को देखो, देह मणि बन जाएंगे, शरीर से अशरीरी हो जाएंगे। अमृत वेले के योग में मस्तक मणि हूं, व्यवहार में संबंध में आए मैं नैनों की नूर हूं, कोई की नजर मेरे पर नहीं लग सकती, मैं तो बाबा की नजरों में समाई हुई हूं, और इन नजरों के बीच में बाबा समाया हुआ है, वो नूर की तरह चमक रहा है, तो दोनों नैनों में बाबा को बिठा लो, मैं बाबा के नैनों की नूर हूं। तीसरा, बाबा के दिल तख्त पर विराजमान मैं दिल तख्त नसीन दिल रुबा हूं, सपूत हूं, आज्ञाकारी हूं, मैं तो दिल रुबा हूं। चौथा समान, बाबा मैं आपकी राइट हैंड भुजा हूं, जरूरत तो लेफ्ट की भी होती है, लेकिन मैं कौन, मैं राइट हैंड भुजा हूं, जो श्रेष्ठ कार्य करने हो मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं आपके हर कार्य के लिए सदा मददगार हूं, राइट हैंड भुजा हूं। और पांचवा, बाबा मैं आपके साथ कंबाइंड हूं, शिव शक्ति हूं, विजयी पांडव हूं। अगर ये पांचों समान कर्म क्षेत्र पर अमृत वेले से रात तक याद रखो, तो मन भटकना बंद कर देगा, कहीं नहीं भटकेगा, लेकिन बार बार वो समान याद आना चाहिए। फिर पांच स्वरूप वो नहीं बता रहा हूं, ड्रिल वाले। सबसे पहले आंख खुलते ही मैं आपका बच्चा हूं, गोद का बच्चा, मां बाप कैसे पालते हैं, बाबा मैं आपका बच्चा हूं, बड़ा नहीं बन जाना, बड़े बनोगे तो बड़ा कहलाना, बड़ा दुख पाना, और बच्चे बन गए तो सब बातों से बच गए। आंख खुलते ही बाबा मैं आपका बच्चा हूं, थोड़ा सा बड़े हुए बाबा मैं आपका स्टूडेंट हूं, गॉडली स्टूडेंट हूं, भगवान मुझे पढ़ा रहा है। कर्म क्षेत्र पर गए मैं रूहानी विजयी योद्धा युधिष्ठिर हूं, युद्ध के मैदान पर हूं। सेवा के लिए निकले मैं आपका खुदाई खिदमतगार हूं, केवल जो सेवा मिली है वो खुदा की खिदमत है, समझ रहे ना, शिव बाबा की सेवा पर उपस्थित है, उसने मुझे सेवा दी है, कोई भी सेवा इंसान ने किसी को नहीं दी, जिस सेवा के लिए निमित्त हूं, चाहे ईश्वरीय सेवा है चाहे लौकिक सेवा है, जो कार्य कर रहे हो सदा ध्यान रखो, ये प्रभु की देन है, मुझे इस सेवा के लिए उसने निमित्त बनाया है, मैं कर रहा हूं, मुझे मेरी सेवा है, मेरी ड्यूटी है, वहां तनाव पैदा करेगी, खुशी गायब हो जाएगी। इसलिए सदा ध्यान रखो, किसी भी प्रकार की सेवा संगम पर, तो हम सब ने, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं चाहे समर्पित हैं, सब के अंदर से है बाबा मैं तेरा हूं, मैंने सब समर्पित किया बाबा, जैसे चलाओ जैसे रखो, ये तन तेरा, ये मन तेरा, ये धन तेरा, ना लागे कुछ मेरा, ये तो कहा ना भक्ति में। अब बाबा कहता बच्चे ऐसे समर्पित होकर के बाबा के आगे समर्पित होके चलोगे, तो बाबा आपको समय प्रसमय साथ देगा, मदद करेगा। इसलिए चौथी बात है, मैं खुदाई खिदमतगार हूं। पांचवी बात, मैं रूहानी यात्री हूं, यात्रा पर चल रहा हूं, बैठा यहां हूं, जा रहा हूं यात्रा पर। तो आप सब यात्री हो, यात्री की क्या विशेषताएं होती है बोलो? दो विशेषताएं यात्री की होती है, जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, बोलो क्या? नीचे नहीं जाते, ऊपर साइड सीन में रुकता नहीं है। किसी ने तीर्थ यात्राएं की हैं? किए हैं, यहाँ हाथ उठाओ जिसने किए हैं तीर्थ पर गए। क्या है भाई, आप बताओ विशेषता। एक मिनट रुको, पीछे हम दो विशेषताएं हैं। यात्री कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता, कौन आ रहा है कौन नहीं आता। एक लक्ष्य की ओर स्मृति है, वैष्णो देवी की यात्रा में जाएंगे ना, जय वैष्णो जय वैष्णो जय वैष्णो देवी, उसका जय जयकार कर उनकी स्मृति में है। पीछे कौन आ रहा है उसकी परवाह नहीं है, जो आएंगे आ जाओ। पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा है यात्री, क्योंकि उसको अपनी लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इसलिए कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना, आप यात्री हो। कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कौन मर रहा है कौन जी रहा है, मुझे नहीं देखना किसी को, मुझे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, मैं यात्री हूं। और दूसरी बात, कोई बोझ लेके नहीं चलेगा। बोझ होगा तो बेचारा चल ही नहीं सकता, क्योंकि पैदल बहुत चलना पड़ता है। एक बार मैं वैष्णो देवी गया तो मुझे कहने लगे, भाई जी 700-800 सीढ़ियां चढ़ेंगे। नो भाई, मेरे बस की बात नहीं है, भावना चाहिए ना उसके लिए, तो चलो हेलीकॉप्टर से ले चलते हैं। हेलीकॉप्टर से ले गए, अब उतरा हेलीकॉप्टर से तो उसके बाद भी बहुत सारा चलना था, सीढ़ी नहीं थी, पैदल 1-2 किलोमीटर था। तो चल तो गए, मंदिर के दर्शन करके बाहर निकले तो टांगे भारी हो गई, और इतनी भीड़, लोग ही लोग, और खच्चर वाले दौड़ा रहे हैं घोड़े। तो मेरे कहा कोई नहीं, घोड़े बैठ जाते हैं। अब मेरे को तो अनुभव नहीं था उस पर बैठने का, फिर भी बिठा दिया लोगों ने। अब वो दौड़ाए ऐसे, जो जितना उसमें थकना शायद उससे ज्यादा थक गए हम, सारे टांगे भर गई, ये हो गया। पहला अनुभव था वो, बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर बैठे। मैंने कहा ये तो क्या सजा हो गई, भावना तो चाहिए ना उसमें, यात्रा में भावना भी तो चाहिए ना। अब वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए, हमको क्या मिला, हमारे पास तो चैतन्य वैष्णो देवियां बैठी हैं। देखा तीनों को, मूर्तियां तो थी ही नहीं वहां, केवल सिंबल रखा था, सिंबल ही था और कुछ मूर्ति नहीं थी, लेकिन वो पवित्रता की, देवियों की पूजा है, पवित्रता की पूजा है, कौमार्यता की पूजा है। ये पवित्र कुमारियों ने अपनी जीवन जो बनाई, उनकी पूजा हो रही, वैष्णो देवी संपूर्ण पवित्र जीवन। तो दर्शन तो कर लिया, लेकिन इतना थक गया करके। कहने का मेरा भाव है, अगर बाबा ने कहा तुम मेरे रूहानी यात्री हो, तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना और कभी लोड लेकर के नहीं चलना। सब बाबा को समझ, बाबा ये सब तेरा, सब तेरा करो, हल्के हो जाओ, ज्यादा सामान लेके यात्री नहीं चलता। सब समर्पित करो, हल्के हो और उड़ो, चलो पहुंचो मंजिल की ओर। तो हम तो परमधाम के यात्री हैं, राही हैं, हमारा तो तीर्थ बहुत ऊंचा है। कभी सूक्ष्म वतन में जाते हैं, कभी मूल वतन में जाते हैं। तो हम सब रूहानी यात्री हैं, विजयी योद्धा हैं, खुदाई खिदमतगार हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं, और उसके बच्चे हैं, सपूत बच्चे हैं। ठीक है, तो ये 5 स्वरूपों को याद रखेंगे ना, तो मन सदा बिजी रहेगा, मन व्यस्त रहेगा। मन का टाइम टेबल यही है, इसमें बिजी करो और व्यर्थ से फ्री करो। नहीं तो सबसे बड़ी अपवित्रता व्यर्थ की है, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ समय बर्तना। अरे क्यों अपना अमूल्य समय इसके पीछे लगा? कोई क्या भी करता है वो जाने, उसके कर्म जाने। बाबा कहता देखते हुए भी नहीं देखो, जो करेगा वो पाएगा। मुझे क्या करना है, अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य और लक्ष्यदाता को सदा याद रखो, सामने रखो। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। सुंदर रीति से पांच अवस्था का वर्णन किया और रूहानी या समान का भी बहुत अंदर सुंदर से समझाया कि एक एक समान को हमें आँख खुलते कैसे लेना है, और साथ में दादी के साथ का अनुभव, मम्मा बाबा की बातें भरपूर हो गए ना। आत्मा का भोजन मिल गया, क्योंकि एक होता है ब्रेकफास्ट, एक होता है भोजन, तो भोजन करा दिया ना। तो भाई जी की एक हाथ से सभी ताली से उसका धन्यवाद करेंगे।
शोहरत भी क्या